समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुबह का समय, ऑफिस जाने का उत्साह, बीते कल के पेंडिंग काम निपटाने की योजना और एक नए दिन की शुरुआत, सभी कुछ तो सकारात्मक है। बस ध्यान रखिएगा कि ये पॉजिटिविटी यूं ही बनी रहे, कोई गलती से भी इसमें सेंध न लगा पाए। आप सोच रहे होंगे क्यों कहा ऐसा? भाई ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि तकरीबन हर इंसान इसी जज्बे के साथ रोज घर से निकलता है, लेकिन कभी कभार किसी सरप्रिय से टकरा जाने पर पूरा दिन और कई बार तो कई कई दिन बर्बाद हो जाते हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, हम उन अनचाही दुर्घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो आजकल सड़कों पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और जिन्हें आप और हम जानते हैं रोड रेज के नाम से। जीवन की आपाधापी में अपना दिमागी सुकून खोकर राह चलते किसी भी इंसान से भिड़ जाना और कभी कभी बड़े अपराध तक को अंजाम दे देना आजकल बड़ी आम सी बात हो गई है। आप आकाशवाणी के श्रोता है तो हमें आपकी चिंता भी है और हमारा फर्ज भी है कि आपको रोड रेज से बचने की सलाह दें, ताकि ना तो आप किसी के लिए दुश्वारी का सबब बने और ना ही कोई आपको नुकसान पहुंचा सके। याद रखिए, सुबह घर से निकलते वक्त से ही घर वालों को आपके शाम को सुरक्षित वापस लौटने का इंतजार रहता है, तो सिर्फ अपने लिए नहीं अपनों के लिए भी अपना ख्याल रखें और एक स्वस्थ समाज बनाने में अपना योगदान दें। इसी के साथ आगाज करते हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। साथ हूं आपके मैं नईम अख्तर और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। गुड मॉर्निंग।
Good morning, Naeem, and a very warm welcome to all our listeners. I truly agree with you what you just said, that we have to be really, really careful when we are driving on the roads, because yes, our lives matter, not just for ourselves but for everyone else in our family as
Absolutely.
well.
Absolutely. क्योंकि हमारा मतलब ऐसा इसलिए नहीं कि सिर्फ सुनने में पढ़ने में ही आता है, personal experience भी है कि जब हम सड़क पे चल रहे होते हैं जबरदस्ती लोग अड़ जाते हैं, तो भाई इससे अच्छा है कि आप अपना सुकून खराब करें, लड़ाई झगड़ा करें या अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, दूसरे को नुकसान, भाई चुप हो जाओ, चुप होकर चुपचाप से निकल जाओ, क्या हो जाएगा, इंसल्ट नहीं होगी बल्कि एक सुकून रहेगा कायम।
एब्सोल्युटली, पीस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ्स एंड एवरी डे वी रीड सो मेनी वियर्ड इंसिडेंट्स दैट वी डोंट वांट टू फेस देम, सो लेट्स जस्ट लीव आवर चैलेंजेस बिहाइंड एंड एंजॉय दिस पर्टिकुलर वेंसडे, रादर आई वुड से एवरी डे। वी आर ब्रीदिंग, वी आर हेल्दी, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड एंड we have to be grateful for this day. So, a very happy Wednesday to all of you, and with this amazing message, let's begin our program Aaj Savere. And today is 23rd of October. We have a lot in store for you on our daily news magazine program, that is Aaj Savere. Let's begin our program with the news headlines, shall we?
जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा पर गश्त की व्यवस्था के बारे में हाल के समझौते को देखते हुए इस बैठक का महत्व बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच पिछले 5 वर्ष में यह पहली सुनियोजित बैठक होगी। श्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल रूस और ईरान के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी ने इन दोनों देशों से संबंधित मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि युद्ध से कोई समाधान संभव नहीं है। श्री पुतिन के साथ बैठक में श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान में सहायता करने को तैयार है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के नेतृत्व के साथ अपनी मुलाकात से राष्ट्रपति पुतिन को अवगत कराया और कहा कि भारत क्षेत्र में शांति कायम रखने में योगदान का इच्छुक है। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले श्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच भी बैठक हुई। उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की थी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि श्री मोदी ने बढ़ते संघर्ष पर गंभीर चिंता प्रकट की और नागरिकों की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में भारत का दृष्टिकोण दोहराया। उन्होंने तनाव दूर करने के लिए वार्ता और कूटनीतिक उपायों पर बल दिया। श्री मिश्री ने बताया कि दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के बारे में भी चर्चा की और वहां के लोगों के लिए मानवीय सहायता जारी रखने के साथ क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। श्री मोदी ने ईरान के साथ सदियों पुराने संबंधों को और सुदृढ़ करने के प्रति भारत की वचनबद्धता भी दोहराई। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों नेताओं ने चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की।
India and Pakistan have agreed to extend the validity of the agreement of Sri Kartarpur Sahib Corridor for a further period of 5 years. The agreement had been signed on 24th of October in 2019 to facilitate the visit of pilgrims from India to Gurdwara Darbar Sahib Kartarpur, Narowal, Pakistan through the Kartarpur Sahib Corridor and was valid for a period of 5 years. Ministry of External Affairs in a statement said that extension of the validity of this agreement will ensure uninterrupted operation of the corridor for use by the pilgrims from India to visit the Holy Gurdwara in Pakistan. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that Narendra Modi government will continue to facilitate country's Sikh communities' access to their holy sites.
Bharatiya Antarrashtriya Film Mohotsav IFFI 2024 ke liye panjikaran shuru ho gaya hai. 55वां Film Mohotsav is varsh 20 se 28 November ke beech Goa mein aayojit kiya jayega. इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट my.iffigoa.org पर पंजीकरण करते हुए टिकट बुक कर सकते हैं. फिल्म जगत से जुड़े पेशेवरों के लिए 1180 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है. साथ ही विद्यार्थियों को इसके लिए प्रतिदिन 4 निशुल्क टिकट दिए जाएंगे. पंजीकरण से जुड़े प्रश्न registration@iffigoa.org पर ईमेल के माध्यम से पूछे जा सकते हैं. इस फिल्म महोत्सव में विश्व स्तरीय फिल्में, लघु फिल्में, नाटक और वृत्त चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे. इसमें फिल्म बाजार, क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो और सिने मेला के अलावा दिग्गज फिल्म निर्माताओं और उद्योग के पेशेवरों द्वारा कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी. 1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के प्रमुख फिल्म समारोहों में से एक है. इसका आयोजन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा गोवा सरकार के सहयोग से प्रतिवर्ष किया जाता है.
International Monetary Fund IMF has retained India's GDP growth rate at 7% during the current fiscal year ending 31st of March 2025. In its latest World Economic Outlook, IMF said India is expected to grow at 6.5% in the next fiscal year, that is 2025-26. Deloitte India's latest economic outlook has also projected India's economic growth to reach between 7 and 7.2%. In the current fiscal. IMF has raised the growth rate for US in 2024 to 2.8% from 2.6% in its July estimate. Global growth remained at 3.2% this year and next. The growth rate for China was reduced to 4.8% from 5% previously.
भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए 7 नई ग्राहक केंद्रित सेवाएं शुरू की हैं. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 4G की शुरुआत के बाद से BSNL के उपभोक्ताओं की संख्या पिछले 6 महीने में 75 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 80 लाख हो गई है. कंपनी के नए लोगों और 7 नई सेवाओं का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल है जिन्होंने स्वयं की 4G दूरसंचार सेवा विकसित की है और इसे जल्द ही 5G में परिवर्तित कर दिया जाएगा. BSNL का नया लोगो शक्ति, विश्वास और सुगमता का प्रतीक है.
The organizers of 2026 Commonwealth Games has decided to remove several prominent sports like hockey, badminton, wrestling, cricket, squash and shooting from the event. In a statement, the organizers announced that the next edition of the games will include only 10 sports, striking a balance between ensuring the event has a multi-sport feel and the need to manage financial and operational risk. The 23rd edition of the Commonwealth Games will take place in Glasgow, Scotland from 23rd of July to 2nd of August in 2026 across 4 venues.
भारत और जर्मनी के बीच बहुप्रतीक्षित हॉकी श्रृंखला की शुरुआत आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हो रही है. मैच की शुरुआत दोपहर 2 बजे होगी. एक दशक के बाद भारत की राजधानी में आयोजित हो रही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धा की वापसी के कारण इस श्रृंखला का विशेष महत्व है. हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में टीम इंडिया जर्मनी के साथ 2 मैच खेलेगी, जो मौजूदा विश्व चैंपियन और पेरिस ओलंपिक्स की रजत पदक विजेता है. भारत पेरिस ओलंपिक्स 2024 के सेमीफाइनल में 3-2 से मिली हार का बदला लेना चाहेगा। इस बीच हॉकी इंडिया ने डिजिटल टिकटिंग प्रणाली के जरिए स्टेडियम में निःशुल्क प्रवेश की घोषणा की है। हॉकी प्रशंसक डीडी स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण भी देख सकेंगे।
एंड आफ्टर हॉकी लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। इन द एसीसी मेंस टी20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप, इंडिया ए विल फेस द होम टीम ओमान एट अल एमरेट क्रिकेट ग्राउंड दिस इवनिंग। द मैच विल बिगिन एट 7 PM IST। तिलक वर्मा लेड इंडिया ए हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स एज दे आर अनबीटेबल। ऑन द अदर हैंड द होस्ट्स आर येट टू विन अ मैच इन द टूर्नामेंट। पाकिस्तान ए विल टेक ऑन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑन द सेम ग्राउंड एट 2:30 PM IST टूडे। द विनर ऑफ दिस क्रूशियल मैच विल मार्च इन टू द सेमीज अलॉन्ग विद इंडिया ए फ्रॉम ग्रुप बी। बोथ द सेमीफाइनल्स विल बी प्लेड ऑन फ्राइडे day followed by the final on Sunday.
और अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी कुछ खास खबरें आज सवेरे में।
Let's talk about Bengaluru first. Karnataka Large and Medium Industries Minister M.B. Patil has put forth a proposal to formulate a policy for the promotion of the green energy sector in the state. Speaking during a meeting with the members of Vision Group on green energy in Bengaluru yesterday, the minister noted that concerted efforts are needed by different departments to achieve the green energy goals. As a first step, he added that a meeting will be held with Power Minister K.G. George along with industries and potential investors. He also said that green industries parks are to be established across the state to attract investments. The CEO of an energy company, Kishore Nair, informed in a meeting that they will invest 45,000 crore rupees for the production of green hydrogen in the state and further expressed his intent to invest in the production of electrolyte and battery. And moving on towards Hyderabad, the Telangana government has officially designated the National Informatics Centre as the new technology partner for the Dharani Integrated Land Records Management System. The government has revealed this is an order yesterday, marking a significant shift in the management of this vital platform. Under the new arrangement, NIC will handle the operations and maintenance of the portal for an initial term of 3 years, with an option for a 2-year extension based on performance metrics. The government's choice to collaborate with NIC is driven by the agency's extensive expertise in land record management. This partnership aimed at enhancing the operational efficiency and transparency of the Dharani portal, ensuring it continues to provide seamless service for land transactions across the state. Moving on to more states, let's ask Naeem.
जी, पहले मैं दिल्ली की बात कर लेती हूँ। दिल्ली से मेरे पास दो खबरें हैं जो बहुत खास खबरें हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के जैव चिकित्सा केंद्र ने स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी में विशेष MSc शोध की शुरुआत की है। ये पाठ्यक्रम अगले साल जनवरी में शुरू किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम को विशेष रूप से चिकित्सा और क्लिनिकल पेशेवरों के लिए तैयार किया गया है। और एक दूसरी खबर जो है भारत की दिल्ली की कला संस्कृति से है। राजधानी दिल्ली में संस्कृति और एकता का प्रतीक फूल वालों की सैर उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। आयोजकों द्वारा मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी को उत्सव का प्रतीक पारंपरिक पंखा भेंट कर 7 दिवसीय इस उत्सव की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस अवसर पर कहा कि फूल वालों की सैर सिर्फ 7 दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि हमारी गंगा जमनी परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में देश के हर हिस्से के लोग, हर धर्म संप्रदाय मान्यता के लोग रहते हैं और इस प्रकार के उत्सव सभी को साथ लाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने फूल वालों की सैर की शुरुआत के मौके पर शहरवासियों को बधाई दी। एक खबर मुंबई से है मेरे पास, तन्वी। मुंबई की फिल्म सिटी या दादा साहब फाल्के चित्र नगरी बीते कल यानी 29 अक्टूबर तक सुशासन सप्ताह मना रही है। मंगलवार को उद्घाटन समारोह में बोलते हुए महाराष्ट्र फिल्म स्टेज और सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक स्वाति पाटिल ने कहा कि सुशासन एक व्यापक शब्द है। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारी अपने दैनिक कार्यों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता, सहयोग, जवाबदेही और न्याय के 6 सिद्धांतों का उपयोग करते हैं तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। उद्घाटन के दिन प्रशासनिक कार्यों पर एक प्रस्तुति दी गई, जैसे कि नोट पत्र और उनके उत्तर कैसे लिखें। आने वाले सप्ताह में सूचना का अधिकार, वित्तीय अधिकार, रिकॉर्ड कीपिंग, व्यक्तित्व विकास और ई गवर्नेंस जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा। और एक आखिरी खबर मेरे पास कोलकाता से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय नबंडा में 24 और 25 अक्टूबर की दरमियानी रात को आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना से उत्पन्न स्थिति से निपटने की तैयारियों पर बैठक की है। उन्होंने मीडिया को बताया कि सरकार ने तूफान से प्रभावित होने वाले सभी जिलों में आवश्यक कदम उठाए हैं। राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी खोले गए हैं। लोगों को तूफान के बारे में जागरूक किया जा रहा है और तटीय इलाकों में पर्यटकों को आगाह कर दिया गया है। ममता बैनर्जी ने बताया कि राज्य शिक्षा विभाग के तहत आने वाले स्कूल कल से 26 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। इस बीच तटरक्षक बल और राज्य सरकार मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए व्यापक प्रचार कर रहे हैं। संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में 14 टीमें भेजी हैं। पूर्वी रेलवे द्वारा सियालदह और हावड़ा डिवीजनों में एहतियाती कदम उठाए गए हैं ताकि रेल सेवाएं सुचारू रहें। और प्रमुख महानगरों की खबरों के बाद प्रमुख महानगरों का मौसम भी इंतजार कर रहा है कि वो भी अपने श्रोताओं तक पहुंचा दिया जाए। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में भी आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
इफ वी टॉक अबाउट चेन्नई, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म विद रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 26 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 20 डिग्रीज एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन और ड्रिजल। द टेम्परेचर विल हैव समवेयर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 21 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 31 डिग्रीज सेल्सियस।
और अब वो वक्त आ गया है कि हम इतिहास बता दें अपने श्रोताओं को। 23 अक्टूबर को इतिहास में क्या क्या खास घटनाएं सारी दुनिया में घटी। 23 अक्टूबर 1910 को ब्लांश एस स्कॉट अमेरिका में अकेले हवाई जहाज उड़ाने वाली पहली महिला बनी। और 1915 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क में लगभग 25,000 महिलाओं ने मतदान के अधिकार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
In the year 1943, Netaji Subhash Chandra Bose inaugurated the Rani Jhansi Brigade in Azad Hind Army and announced war against the British Empire.
1946 में नॉर्वे के त्रिग्वेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव नियुक्त हुए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के न्यूयॉर्क में पहली बार इसकी बैठक हुई थी। 1958 में रूसी कवि और उपन्यासकार बोरिस पास्टरनाक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। और 1980 में लीबिया और सीरिया द्वारा एकीकरण की घोषणा हुई।
In the year 1985, राजीव गांधी went to New York for the 40th anniversary of the UN.
1989 में हंगरी ने खुद को गणराज्य घोषित किया।
In 1992, UPSC decided to introduce a new essay paper for the civil services examination. And year 1996, Amjad Ali Khan, Sarod Maestro, was appointed as UNICEF's national ambassador for children.
2001 में नासा के मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की परिक्रमा शुरू की। तो ये 23 अक्टूबर का इतिहास था कि कहां कहां क्या क्या खास घटा। और अब 23 अक्टूबर को पूरी दुनिया में कहां कहां कौन कौन सी महान हस्तियां जन्म लिया जिन्होंने, या फिर जो हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई, अब हमारे उस सेगमेंट का वक्त आ गया है। तो पहले बात करते हैं सबसे पहले सूबेदार जोगिंदर सिंह की, जिनका शहादत आज ही के दिन 23 अक्टूबर 1962 को हुई थी। ये परम वीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक थे। इन्हें ये सम्मान 1962 में मरणोपरांत मिला। स्वतंत्र भारत ने चीन से सिर्फ एक युद्ध 1962 में लड़ा, जिसने उसे बहुत सारे अनुभव दिए। ये अनुभव फौजी हकीकत से तो जुड़े हुए थे ही, इनमें राजनीतिक तौर पर भी बहुत कुछ आंख खोल देने वाला था। इस युद्ध में चीन के साथ लड़ते हुए भारत के 4 पराक्रमी योद्धाओं ने परमवीर चक्र प्राप्त किए। इन 4 में से 3 को तो ये यश मरणोपरांत मिला और केवल एक वीर सारी कथा को बताने के लिए जीवित बचा रहा। उन 3 योद्धाओं में जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, एक सूबेदार जोगिंदर सिंह भी थे, जो सिख रेजिमेंट के एक सेनानी थे और टोंगपेनला नेफा में बुमला मोर्चे पर लड़ रहे थे। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने जिस खूबी के साथ और जिस बहादुरी से इस युद्ध को लड़ा और उसके लिए परमवीर चक्र प्रदान किया, उसके लिए हम भी सैल्यूट करते हैं। और अब आज के दिन की ही हम आपको बात बताते हैं कि आज 23 अक्टूबर को मीनू मुमताज की भी पुण्यतिथि होती है। ये एक हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री हैं जो अपने समय के मशहूर कॉमेडियन महमूद अली की बहन थीं। भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री रहीं मीना कुमारी और मीनू मुमताज ने काफी गहरी दोस्ती थी। 1950 से 1960 के दशक में बतौर डांसर कई फिल्मों में काम करने वाली मीनू मुमताज एक डांसर के साथ साथ कैरेक्टर आर्टिस्ट भी थी। मीनू मुमताज का असली नाम मलिकुन्निसा अली था। जब फिल्मों में काम करने लगी तो मीना कुमारी ने उनका नाम बदलकर मीनू मुमताज कर दिया था। तब से फिल्म इंडस्ट्री में मीनू मुमताज के नाम से वो मशहूर हो गई और उन्होंने इतना काम किया है फिल्मों में कि मीनू मुमताज का चेहरा देखने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ नाम सुनकर के ही लोगों के जहन में उनका चेहरा उभर आता है। एक गीत आपके लिए लेकर के आए हैं, फिल्म 14वीं का चांद का बहुत खूबसूरत नगमा है, सुनिए। मीनू मुमताज पर ही फिल्म आया गया है।
Right, we have more people in our list today, and today is the birth anniversary of Edson Arantes do Nascimento. We better know him as Pele, a Brazilian professional footballer who played as a forward.
बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, बिना पेले के फुटबॉल अधूरा लगता है.
Absolutely, any football fan knows him, and he is widely regarded as one of the greatest players in the history of the sport, and he was among the most successful and popular sports figures of the 20th century. He is no more with us in this world, but yes, we have a lot about him. We have read about him. We have seen his goals, and we have a song from his biopic in the voice of nobody else but A.R. Rahman and Ana Beatriz, titled Ringa. Let's hear that.
और आज ही जयंती है देवेन वर्मा की, हिंदी सिनेमा में एक बहुत ही मशहूर हास्य अभिनेता देवेन वर्मा। हिंदी फिल्मों में अपने शानदार हास्य अभिनय से सभी का दिल जीत लेने वाले थे देवेन वर्मा। देवेन वर्मा ने लगभग 149 फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्में गोलमाल, अंगूर, खट्टा मीठा, नास्तिक, रंग बिरंगी उनके करियर की उन बड़ी फिल्मों में से एक रही थी जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। बेशर्म सहित कुछ फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी उन्होंने किया था। चोरी मेरा काम, चोर के घर चोर और अंगूर फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। देवेन वर्मा बड़े पर्दे पर आखिरी बार कलकत्ता मेल फिल्म में नजर आए थे। मशहूर कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना में उन्होंने आज के सुपरस्टार आमिर खान के पिता की भूमिका निभाई थी। और जब हम इतनी बात कर रहे हैं कि इतने बड़े हास्य अभिनेता थे, तो एक गीत क्यों ना ऐसा हो जाए तन्वी, जिसमें मतलब गीत उन पर पिक्चराइज है पर साथ ही सिर्फ देखने के लिए नहीं सुनने में भी अगर हंसी ना आए तो बात रही।
बिल्कुल।
मम्मी ओ मम्मी तू कब साथ बनेगी, मम्मी ओ मम्मी तू कब साथ बनेगी। जब 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 मेरी शादी होगी तब 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 तू दादी होगी। जब 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 मेरी शादी होगी तब 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 तू दादी होगी।
गाना मजेदार।
Absolutely, it was wonderful, and of course, it reminds us of Devin Verma.
Ji.
And today we are talking about another personality, and his name is Uppalpati Venkat Suryanarayan Prabhas Raju. Wow. Can you guess whom am I talking about?
Prabhas, one of my favorites.
Absolutely, and he is defined by the role that he has done in the movie Bahubali.
Right.
Right. He is the only Indian actor to have 6 films with a worldwide gross opening of over 100 crore rupees, and he is only the South Indian actor with 6 films that have crossed 100 crore rupees net mark in the Hindi market. He is a big name, an Indian actor who predominantly works in Telugu cinema, and he is one of the highest paid actors in Indian cinema and has been featured in Forbes India Celebrity 100 list since 2015. He has appeared in over 20 films and have received so many awards. So here comes the song from the movie Bahubali.
Bahubali hai kal se bhi wo na dare haatho pe hai sheesh liye maa jo kabhi
maang le to wo pal mein kaan. So after an actor, now we are talking about a writer. We're talking about Arvind Adiga. Today is his birthday, and he's an Indian writer and journalist as well. Of course, he started writing his debut novel, The White Tiger, which was published in March 2008. The book won the Booker Prize later that year. And he's the fourth Indian-born author to win the prize after Salman Rushdie, Arundhati Roy and Kiran Desai. And
novel ki baat ki hai, The White Tiger, uski khas baat ye कि ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कामयाब होने के लिए किसी भी रास्ते को गलत नहीं मानता है।
True.
जी, और इन्होंने जब अपने लेखन की शुरुआत की थी तो खास तौर पर अपने उपन्यास ये अंग्रेजी में ही लिखते रहे हैं।
राइट। इन अप्रैल 2009 इट वाज अनाउंस्ड दैट अ नॉवल वुड बी अडैप्टेड इनटू अ फीचर फिल्म एंड दैट वाज लेटर रिलीज्ड इन 2021। सो लेट्स हियर अ वेरी पावरफुल डायलॉग फ्रॉम द सेम बुक।
बट बाय नाउ आई न्यू द रिच नेवर गिव एनीथिंग फॉर फ्री। He had found my replacement. That's when we saw the creature that gets born only once every generation. White tiger. Iqbal, that great Muslim poet, was right when he wrote, "The moment you recognize what is beautiful in this world, you stop being a slave."
एक और हिंदी फिल्मों के बहुत मशहूर और प्रतिभाशाली अभिनेता जिनकी आज जयंती, उनका नाम था शफी इनामदार। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म विजेता से की और अर्ध सत्य तक इसे जारी रखा। उसके बाद भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया। उन्होंने ये जो है जिंदगी सहित कई टेलीविजन धारावाहिकों में भी अभिनय किया और उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्म भूमिकाओं में आज की आवाज में इंस्पेक्टर अवाम में खलनायक और नजराना, अनोखा रिश्ता अमृत जैसी फिल्मों में नायक का दोस्त शामिल है। चलिए एक गीत सुनते हैं फिल्म अमृत से ही, जो खुद शफी इनामदार पर पिक्चराइज्ड है।
किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा। शराफत ने मारा शराफत अली को.
It's also the birthday of Emilia Clarke, an English actress. She's best known for her role as Daenerys Targaryen in the fantasy series Game of Thrones, for which she has received nominations for 4 Primetime Emmy Awards. And after Emilia Clarke, it's also the birthday of Ryan Reynolds, a Canadian and American actor, producer and much more. We know him by Deadpool. So there's a song from his last released film, Deadpool and Wolverine, sung by NSYNC, titled Bye Bye Bye. Let's hear that.
लीजिए, आपने पहले ही बाय 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 कर दिया, तो अब तो मुझे भी करना पड़ेगा. मुझे भी बाय बाय अनुमति दीजिए. नई वक्त और तन्वी खुराना को सभी श्रोताओं, आपसे विदा लेने का वक्त हो गया. आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं. सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड और हमें दीजिए इजाजत.
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ सुपर्ब डे. नमस्कार.